नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं इस समय आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन श्रोता मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं, अपनी गवाहियों को हम तक पहुंचाते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब भी जो इस समय परमेश्वर के वचन में से सुनने जा रहे हैं अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे और पत्र के माध्यम से हमसे बातचीत करेंगे ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएं। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक में से मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, भविष्यद्वक्ता मीका, जो यशाया का समकालीन था, दक्षिणी राज्य यहूदा के एक छोटे से नगर का निवासी था। उसे इस बात का पूरा निश्चय था कि जिस प्रकार के विध्वंस को आमोस ने उत्तरी राज्य के लिए भविष्यवाणी की थी, उसी प्रकार राष्ट्रीय विध्वंस यहूदा पर भी आने वाला था और इसका कारण भी समान था। परमेश्वर लोगों के घृणित अन्याय का दंड अवश्य देगा, फिर भी मीका के संदेश में भावी आशा के अधिक स्पष्ट और विशिष्ट चिन्ह पाए जाते हैं। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि इसराइल के मूर्ति पूजा के अपराध के बाद अब मीका गरीबों पर अत्याचार करने वालों को डांटता है, उनके बारे में कहता है, वे बिस्तरों पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते थे और सुबह होते ही उसे पूरा कर डालते थे, क्योंकि वे बलवंत थे। वे गरीबों के खेत और घर छीन लेते थे और गरीबों के पूरे घराने पर अत्याचार करते थे, जैसा कि आज भी हम सब देखते हैं। अतः परमेश्वर ने उन पर ऐसी विपत्ति डाली कि वे अपनी गर्दन मुक्त नहीं करा पाए। वे घमंडी और हठीले थे, परंतु परमेश्वर के दंड के अधीन वे अपना सिर उठाकर चल ना पाए। जी हां, गरीबों पर अत्याचार परमेश्वर सहन नहीं करता है। तो आइए हम इसी पुस्तक का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मीका की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, मीका 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है, हाय, वह उसे मुझसे कितनी दूर कर देता है, वह हमारे खेत बलवा करने वालों को दे देता है। मेरे प्रियो, उन पर महान विपत्ति आने वाली थी। वे दुख का गीत गाएंगे, शोक का गीत। जी हां, आप जानते हैं कि इसराइली लोग शोक का गीत गाया करते थे। इसे इब्रानी भाषा में अभिव्यक्त किया गया है, लेकिन हिंदी में यथार्थ अनुवाद संभव नहीं है। उनके लिए अब कोई आशा नहीं थी। हमारा तो सर्वनाश हो गया। जी हां, यदि हम घमंड करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, तो एक समय सीमा है जिसके बाद परमेश्वर को कदम उठाना पड़ता है और जब वह दंड देता है तो वह सर्वनाश कर देता है। आइए हम आगे देखते हैं कि मीका क्या कह रहा है। मीका की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, इस कारण तेरा ऐसा कोई ना होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। यहां पर कहता है कि तेरा ऐसा कोई भी नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। मेरे प्रियो, इसके अनेक अनुवाद हैं, परंतु इसका अर्थ है कि वहां परमेश्वर की आराधना अब नहीं की जाएगी। वहां परमेश्वर की आराधना अब नहीं की जाएगी। इतने हठीले लोग हो गए हैं कि वे परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। मीका नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, बकवासी कहा करते हैं, बकवास ना करो, इन बातों के लिए ना कहा करो, ऐसे लोगों में से अपमान ना मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है? मेरे मित्रों, इस समय परमेश्वर ने भविष्यद्वाणी की आत्मा हटा ली थी। क्यों? क्योंकि वे सुनते नहीं थे। इस समय परमेश्वर के वचन का अभाव था, अकाल था, लोग तरसते थे, फिर भी उन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता था। यहां पर हम देख रहे हैं, क्या ये काम उसी के किए हुए हैं? परमेश्वर कहता है कि वह भी षड्यंत्र रच रहा है उन्हीं की भाषा में, क्योंकि यह उनका दंड होगा, वह उनके विरुद्ध न्याय करेगा। यहां पर हम पढ़ते हैं, क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? यद्यपि यह संदेश कठोर है, यहोवा का भय मानने वाले सुनकर उसका पालन करते हैं। मेरे मित्रों, यह संदेश भजन संहिता 23 और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 के समान आनंददायक नहीं है, परंतु परमेश्वर इसे उतना ही महत्व देता है, और यही कारण है कि परमेश्वर ने इसे 23वें अर्थात भजन संहिता 23वें अध्याय और यूहन्ना 14वें अध्याय की अपेक्षा अध्याय 2 में रखा है, कि हम इससे ना चुकें, इसके सत्यता को, इसकी गंभीरता को समझ लें। परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम इसे समझें। मीका नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरोध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चले जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि यद्यपि वे उसकी प्रजा थे, परंतु अब वे उसके बैरी हो गए हैं, जिसका प्रमाण उनका व्यवहार है, जो वे गरीबों के साथ में करते हैं। परमेश्वर गरीबों के साथ न्याय करने के पक्ष में रहता है। परमेश्वर की शिकायत है, तुम शांत और भोले भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो। चादर उनका बिछौना होता था। वे गरीबों को लूटने में इतना अधिक गिर गए थे, वे उनका चादर उनके नीचे से निकाल लेते थे। मेरे मित्रों, क्या ये त्रासदी नहीं है कि एक गरीब जिसके पास में तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, जिसके पास एक चादर है, उससे भी उसके सोते सोते उसके नीचे से निकाल लेते थे, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें दंड देगा। गरीबों का बुरा हाल था, जैसा कि आज भी हम अपने देश में देखते हैं कि गरीब गरीब ही होते हैं और अमीर फलते फूलते चले जाते हैं। मीका के समय में ऐसा ही था। मीका नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 9 पद में आगे वह कहता है, मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। यहां पर वह कहता है कि मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो। यह शायद विधवाओं के विषय में है जिन्हें उनके पति से घर मिले थे, परंतु उन्हें वहां से वे निकाल देते थे, उन्हें भी सताते थे, प्रताड़ित करते थे ताकि वे रास्ते पर आ जाएं। इसलिए वह कहता है उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए, सदा के लिए छीन लेते हो। वे छोटे छोटे बच्चों से भी परमेश्वर की दी हुई वस्तुएं छीन लेते थे और वे विद्रोही हो जाते थे। मेरे विचार में आज हमारे युवा वर्ग के विद्रोह में परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम नींद से जागें ताकि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की बातों को सिखा सकें। आज संसार इतना बुरा होता जा रहा है कि एक दूसरे के प्रति कुछ भी चिंता नहीं करता है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और यही कारण है कि गरीबी बढ़ते जा रही है। और परमेश्वर चाहता है कि सत्यता लोगों तक पहुंचे, परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचे, और इसी बात को पहुंचाने के लिए मीका को परमेश्वर ने भेजा ताकि अपने लोगों को यह बताए कि वे क्या कर रहे हैं और परमेश्वर उनके जीवन का भी न्याय करेगा। मीका नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, उठो चले जाओ क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है, इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। वे परमेश्वर के साथ शांति, श्रापित किए बिना समस्याओं का समाधान करके विश्राम पाना चाहते थे। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। मेरे प्रियो, उनके पाप की अशुद्धता और उनके निर्दयी शोषण के कारण वह भूमि उन्हें दूर कर देगी। क्या आज आप भी अशुद्धता का जीवन जी रहे हैं? क्या आप पाप कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में उन कार्यों को कर रहे हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है? मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वह पवित्र है, वह शुद्ध है, और वह चाहता है कि उसके अनुयायी भी उसके समान पवित्र बने, शुद्ध बने, और यही कारण है कि वह इसराइलियों से भी इस बात को कहता है कि वे अशुद्ध हैं, और इसके कारण से वे दुख उठाएंगे, वे नाश किए जाएंगे। आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है? मीका आगे कहता है 2 अध्याय उसके 11 पद में, यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। मेरे मित्रों, यह एक तीक्ष्ण कटाक्ष है। परमेश्वर कहता है तुम्हें तो ऐसे भविष्यद्वक्ता चाहिए जो तुम्हारे पापों को स्वीकृति प्रदान करे। आज लोग नहीं चाहते कि प्रचारक परमेश्वर के दास कहे कि शराब पीना बुरा है, परंतु आज हमारे कलीसियाओं के अधिकांश प्रचारक या सेवक सामाजिक रीति से थोड़ा थोड़ा पीने को अनुमोदित करते हैं। उनका कहना है कि हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, अतः हम ऐसा कर सकते हैं। मेरे मित्रों, यह सच है कि हम मूसा की व्यवस्था की अपेक्षा अनुग्रह के अधीन हैं, और इस कारण हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उन्हें उसकी आज्ञाओं को मानना है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वही उसका संतान है। वह निश्चय ही शराब की लत को बुरा कहता है। मीका के युग में वक्ता इसराइल के पापों को अनुचित नहीं कहते थे और उनका विरोध भी नहीं करते थे। वे जनमान्य प्रचारक थे और वे वही कहते थे जो प्रजा सुनना चाहती थी। जैसा कि आज भी बहुत से प्रचारक अपनी कलीसियाओं में करते हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि जो कुछ आप सुनना चाहते हैं उसी बात को आपको सुनाया जाए? क्योंकि बहुतों के लिए कानों की खुजली को मिटाना होता है। वे परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, परंतु अपनी इच्छा अनुसार अपनी ही बातों को सुनना चाहते हैं ताकि वे किसी प्रकार की समस्या में ना पड़ें। परंतु वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन को देख रहा है, परमेश्वर उनके जीवन के हर एक हलचल को देख रहा है। जी हाँ, आज बहुत सारे लोग शराब के आदी हैं। जब आप उनसे कहते हैं कि शराब पीना गलत बात है तो वे तुरंत पलटकर बाइबल के बातों को आपको समझाते हैं। कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पीने के लिए पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था। जी हाँ, वह इसलिए कहा क्योंकि उसके शरीर में तकलीफ थी और वह चाहता था कि वह स्वस्थ रहे। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे पाएं। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और उसमें कई पदे हैं, लेकिन आप उन पदों पर ध्यान नहीं देते हैं परंतु एक ही पद का आप हवाला देते हैं। मेरे प्रियो, क्या ही ये दुखद बात है कि आज हम परमेश्वर के वचन को नकार देते हैं। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस समय अपने जीवन में इसी प्रकार की बुराइयों के शिकार हैं, परंतु आप निराश ना हो, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप इससे बाहर निकलें। यदि आप इसे प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर को नाश करते हैं। यह देह जिसे परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर ने बनाया है, और कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जी हाँ, परमेश्वर का मंदिर मैं और आप हैं। इस देह को परमेश्वर ने बनाया है, इसमें उसका आत्मा वास करता है। यदि आप इसी को नरक बना देंगे, इसी को कूड़ा और कचरे का डब्बा बना देंगे, तो परमेश्वर कहां से आपके जीवन में रहेगा? और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शांति दे, आपको आनंद दे, आपके परिवार को भला चंगा रखे, क्या यह संभव है? जब तक आप इसे साफ सुथरा नहीं करते हैं तब तक परमेश्वर इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, अभी भी आपके पास में समय है, क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। उसने इसराइलियों को भी बार बार अवसर दिया, उन्हें मौका दिया ताकि वे अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएं। आपके पास भी मौका है। इस समय जब आप परमेश्वर के वचन में से सुन रहे हैं, अपने जीवन पर विचार करें, अपने आप को देखें कि आप कहां पर हैं। क्या आप परमेश्वर के दंड से बच सकते हैं? क्या आप उस दंड को पाना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं? मेरे मित्रों, मैं आपको यहां पर भयभीत नहीं करना चाहता, परंतु यह सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। आगे यहां पर मीका कहता है कि बचे हुओं के लिए प्रतिज्ञा। मीका का संदेश कठोर था, कठोर है अभी के लिए भी, परंतु इस अध्याय के अंत में एक अति मनोहर भविष्यवाणी है जो काले बादलों के पार एक सूर्य की किरण के समान है। मीका नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इसराइल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा। उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो, वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। मेरे मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब परमेश्वर उनके पापों की चर्चा करता है, तब वह उन्हें याकूब कहकर संबोधित करता है। इस पद का अभिप्राय है कि परमेश्वर उन्हें दया दिखाएगा, परंतु इसलिए नहीं कि वे उसकी दया के योग्य हैं या उनमें कोई ऐसा विशेष गुण है, परंतु केवल इसलिए कि वह अनुग्रहकारी है। वह आज हम पर भी अनुग्रह करता है, इसलिए नहीं कि हम भले और अच्छे लोग हैं, हम धर्मी लोग हैं, परंतु इसलिए कि वह हम पर अनुग्रह करता है, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है। यहां पर लिखा है, हे याकूब, मैं निश्चय ही तुम सबको इकट्ठा करूंगा। यह भविष्यवाणी न तो बेबीलोन से बंधुआई में से लौटने के बाद पूरी हुई है और न ही इस बार स्वदेश आगमन पर पूरी हुई है, क्योंकि उसने कहा है कि सबको अर्थात हर एक यहूदी को इकट्ठा करेगा। इस समय अमेरिका देश के न्यूयॉर्क नगर में यहूदियों की जनसंख्या इसराइल की जनसंख्या से अधिक है, यहां तक कि रूस और अन्य देशों में अभी भी असंख्य यहूदी हैं। अतः परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणी के अनुसार सब इसराइलियों को अब तक इकट्ठा नहीं किया है, परंतु वह कहता है कि मैं सब इसराइलियों को एक स्थान पर इकट्ठा करूंगा और वहां पर कोलाहल मचेंगे। आगे वह कहता है, मैं इसराइल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा। बचे हुओं के लिए परमेश्वर इसराइल शब्द काम में लेता है। परमेश्वर के पास इसराइल के निष्ठावान सदैव उपस्थित हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100% इसराइली परमेश्वर की ओर फिरे हैं। यह तो इन निष्ठावान बचे हुए इसराइलियों के कारण था कि परमेश्वर ने उस जाति पर सदैव दया दृष्टि की। महाक्लेश में भी इसराइल से अभिप्राय है बचे हुए 144,000। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि उन पर मुहर लगाई जाएगी। मेरे विचार में यह मुहर पवित्र आत्मा की है। वे महाक्लेश से बच निकलेंगे। आज इसराइल देश में 30,00,000 यहूदी हैं और अन्य देशों में लगभग 120,00,000 यहूदी हैं। अतः इसकी तुलना में 144,000 वास्तव में बचे हुए ही हैं। वह आगे कहता है, बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा। बोस्रा में बहुत उत्तम चारागाह होने के कारण भेड़ बकरियां बहुत होती थी। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एकत्र करेगा, तब भजन संहिता 23 की स्थिति पूरी होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चारागाहों में बैठाता है। भजन संहिता 23 उसके 1 और 2 पद में हम इसे पाते हैं। आगे वह कहता है, वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। कोलाहल का कारण होगा कि असंख्य लोग स्वदेश लौटेंगे। जी हां, परमेश्वर इसराइलियों को स्वदेश लौटाएगा तो इसका अर्थ यह नहीं कि सबका उद्धार होगा, परंतु यह एक अद्भुत घटना होगी। आज इसराइलियों का स्वदेश लौटना भविष्यवाणी के शिक्षकों के लिए बड़े आनंद का कारण है। तो उस भावी घटना के बारे में सोचें, जब सब इसराइली स्वदेश लौट आएंगे, तब वहां पर आनंद होगा। मीका की पुस्तक 2 अध्याय उसके 13 पद, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। यहां पर लिखा है उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। यहां पर तोड़ने वाले से अभिप्राय है मार्ग सीधा करने वाला, बाधाएं हटाने वाला। और मेरे विचार में यह प्रभु राज की घटना है जब प्रभु यीशु उनकी अगुवाई करेगा। वह उनका मार्ग तैयार करने वाला है, उनका राजा, उनका प्रभु होगा। जी हां, जब वह इस पृथ्वी पर लौटेगा। मेरे मित्रों, हम यहां पर देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को अवसर देता है कि वे अपने मनों को फिराएं, और तब जब वे मन को फिराते हैं तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर लौटें, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आप इन आशीषों को दूसरों के साथ बांटेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।